ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में एंग्लो केल्टिक या यूरोपियाई मूल के लोग देश में 95% चीफ एग्जीक्यूटिव या सीनियर मैनेजमेंट जॉब्स में हैं। ये रिपोर्ट 2016 के लीडिंग फॉर चेंज पहल की समीक्षा है जिसका लक्ष्य है कि उच्च पदों पर नेतृत्व की भूमिकाओं में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जाए। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के पदों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 97% जितने ज्यादा इन पदों पर एंग्लो केल्टिक या यूरोपियाई मूल के लोग हैं। वहीं इस रिपोर्ट में पाया गया है कि सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर सांस्कृतिक विविधता थोड़ी सी ही बेहतर होती है, जहां 2400 से भी अधिक सीनियर लीडर्स में से 95% एंग्लो केल्टिक या यूरोपियाई मूल के हैं। हालांकि गैर यूरोपियाई या इंडिजिनस मूल के लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या में करीब 24% है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व के पदों पर उनकी संख्या केवल 5% है। रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर टिम सूटपोमसान का कहना है कि इस रिपोर्ट में जो पाया गया है उससे ये सवाल उठते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में टैलेंट को रिवॉर्ड किया जाता है।
The general Australian population has about 24% of people who have non-European and indigenous background. What we're seeing then is a significant underrepresentation of cultural diversity in senior leadership. And this challenges us as Australians to ask whether what we're seeing reflects the kind of multicultural nation that we are.
Dr. Sudpomasan ka kehna hai ki Australiai sarkari vibhag aur vishwavidyalayon mein senior leadership ki bhumikaon mein vividhata khas taur se kam hai aur unhone kaha hai ki badlav lana sabhi ki zimmedari hai.
Begins with senior leaders setting the tone in organizations and committing themselves to getting the most out of our multiculturalism. And it's got to happen not only in our workplaces, government institutions, it's also got to happen in our homes.
Diversity Council Australia ki chief executive Lisa Anees ka kehna hai ki unki company ki research ne paya hai ki bahusanskritik vividhata ki prishthabhoomi se aane wale log school, university aur graduate work mein achha pradarshan karte hain. लेकिन उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ये संकेत देती है कि वो मैनेजमेंट में सीनियर लेवल्स या वरिष्ठ उच्च पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुश्री अनीस ने इसके पीछे उनके अनुसार इस स्ट्रक्चरल बायस को कारण बताया कि एक एग्जीक्यूटिव को कैसे दिखना चाहिए।
Organizations can firstly identify that there is an issue or a problem. They can make an assessment of their own workplaces to see just how diverse their leadership teams are. Do they reflect their market? Do they reflect their customers? And then they can work on implicit and explicit bias. Until they do that, you're always going to be hiring the same type of people for those and grooming them for those leadership positions.
वहीं हमने इस विषय पर और जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में प्रोफेसर पुर्णेंद्र जैन से बात की जो 30 सालों से ऑस्ट्रेलिया में हैं।
तो ये रिपोर्ट पहले भी 2 साल पहले भी आई थी, नया रिपोर्ट है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है 2 सालों में, और मेरी ये राय है कि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबे समय तक व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। जब वो खत्म हुई लेट 1960s अर्ली 1970s में, तब स्लोली जो है माइग्रेंट्स जो है नॉन यूरोपियन माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आना शुरू हुए, और पिछले 10 साल में लगभग जो माइग्रेशन है एशिया से वो काफी इंक्रीज हुआ है, काफी रैपिडली वो जो परसेंटेज है वो एशियन परसेंटेज बढ़ा है। तो अब इसको ये देखना है कि जो ये 10 सालों में इतना रैपिड परसेंटेज बढ़ा है वो सीधे हायर या सीनियर लेवल पे लीडरशिप में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है कि नहीं हुआ है, और बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा कि जो नए माइग्रेंट्स आए हैं उनको आप सोचो कि सीनियर लीडरशिप में पहुंच जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो यूरोपियन है उनकी जो परसेंटेज है वो करीब 20% है, और उनकी पॉपुलेशन भी लगभग उतना ही है, 18-19%। तो आप ये देखिए कि यूरोपियन माइग्रेशन यहाँ पे World War II या उसके पहले भी शुरू हो गया था, तो वो लोग सेकेंड थर्ड जनरेशन, कुछ हो सकता है फोर्थ जनरेशन भी होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं। तो धीमे धीमे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, यहाँ पे पढ़ाई करी है, यहाँ पे काम करा है, तो धीमे धीमे वो लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि ये जो रिजल्ट है उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा अलार्म होने की जरूरत नहीं है, ये एक रियलिटी है और रियलिटी हम देख रहे हैं कि क्या है, लेकिन इसमें कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मेरा ये विश्वास है कि अगले 5, 10, 15 साल में जब नॉन यूरोपियन खास करके एशियन माइग्रेंट्स के जो बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे, यहाँ के स्कूल सिस्टम से निकलेंगे, यहाँ के सिस्टम को समझेंगे, तो धीमे धीमे वो लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचेंगे।
जी अच्छा, बस आपसे एक ये सवाल करना था कि जो ये जो रिपोर्ट आई है, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि क्योंकि नए प्रवासी हैं इसलिए समय लगेगा और हमें शायद और 10, 15, 20 साल बाद देखना चाहिए कि तब क्या स्थिति है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद सिस्टमिक चेंजेस की भी आवश्यकता है, कि हो सकता है कि ये एक सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना होगा अगर वहां तक पहुंचना है तो?
हाँ, जैसा कि आपने कहा कि इसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और स्ट्रक्चरल के साथ साथ थोड़ा बायसेस और प्रेजुडिसेस होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि थोड़ा प्रेजुडिसेस और थोड़ा बायसेस हैं, लेकिन ये बायसेस प्रेजुडिसेस अभी कुछ समय तक मेरे हिसाब से हो सकता है कि चलेगा, लेकिन जैसे जैसे, जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारे बच्चे इस सिस्टम से निकलेंगे, यहाँ पे नेटवर्किंग होगी, उसी वातावरण में बड़े पले हैं, तो चांसेस हैं कि 10 साल 15 साल में हम चेंजेस देखेंगे। और हम देख रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, वैसे ये सेकंड थर्ड जनरेशन की बात नहीं है, अब देखिए जैसे ये परसेंटेज एक अलग बात है, कुछ एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। जैसे अभी हाल में पिछले 10 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के 2 हाई कमिश्नर्स जो इंडिया गए वो दोनों भारतीय मूल के हाई कमिश्नर्स थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड में एक बहुत ऊंची पोजीशन हासिल करके उनको वो पोजीशन मिला। हमारे साउथ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे इस स्टेट के गवर्नर जो हैं वो जो है एक वियतनाम के रिफ्यूजी हैं, वो 1967 में मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया आए थे एज ए रिफ्यूजी, तो वो यहाँ के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। तो परसेंटेज एक तरफ है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। फिर आप इलेक्शन में देख लीजिए, इलेक्शन में चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे फेडरल लेवल पे हो, 10 वर्षों पहले तक बहुत कम भारतीय या एशिया ओरिजिन के लोग किसी इलेक्शन में खड़ा होने के लिए सोचते थे, लेकिन अभी आप देखिए उनका नंबर्स बढ़ता जा रहा है, उनकी एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी मिनिस्टर जो है वो एशियन बैकग्राउंड का या नॉन यूरोपियन बैकग्राउंड का नहीं है। ये बताया गया है कि हमारे यूनिवर्सिटी लीडरशिप में वाइस चांसलर पोजीशन पे पिछले 2 साल पहले तक कोई भी नॉन यूरोपियन बैकग्राउंड का वाइस चांसलर नहीं था, अभी एक वाइस चांसलर है जो कि एशियन बल्कि इंडियन ओरिजिन के वाइस चांसलर है। तो जो हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे तो उसमें हम देखेंगे कि थोड़े चेंजेज हो रहे हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज में देखते हैं तो हम देखते हैं कि चेंजेज इज वेरी वेरी इंक्रीमेंटल, इज वेरी स्लो, और वो जो मैच है कि हमारा पॉपुलेशन क्या है और हायर पोजिशन पे कितने लोग हैं, वो मैचिंग में अभी बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी भी बायस जो है आप देखेंगे एंग्लो केल्टिक के लोग 55-56% हैं, वो करीब 75% पोजिशन पे हैं। यूरोपियन लोगों का बैलेंस है ऑलमोस्ट, लेकिन नॉन यूरोपियन की इनबैलेंस बहुत लंबा है, लेकिन इसमें थोड़ा मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है कि इसमें समय लगेगा, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी और स्ट्रक्चर जो बहुत समय से चलता आ रहा है उसमें थोड़े बदलाव लाने की जरूरत है, और ये बदलाव इंक्रीमेंटल होगा, ऑल ऑफ ए सडन इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है,
लेकिन आपको उम्मीद है कि आगे चलते पर हो सकता है कि बदलाव आए।
मैं ये कह रहा हूँ कि कनाडा में ले लीजिए, यूके में ले लीजिए, यूएस में ले लीजिए, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उस तरीके के पोजीशंस पे वो लोग पहुंचे हैं क्योंकि उन देशों में जो माइग्रेशन है बहुत लंबे समय से चल रहा है और थोड़ा स्ट्रक्चर और सिस्टम्स डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन की हिस्ट्री खास करके एशिया से बहुत शॉर्ट पीरियड हुआ है और स्ट्रक्चर और सिस्टम्स डिफरेंट है, तो समटाइम्स कंपैरिजन से फायदा होता है, हमेशा कंपैरिजन एक हमें दिशा नहीं देती है। तो हमें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के रूप में समझ के हमें ये लगता है कि धीमे धीमे इसमें बदलाव होगा, लेकिन अगर परसेंटेज में बैलेंस जो हम देखेंगे उसमें अभी मेरे हिसाब से बहुत समय लगने वाला है, 15 साल 20 साल भी लग सकते हैं।